أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين أما بعد پیارے دوستو اور درشکوں السلام علیکم. ہم اپنے آج کے پروگرام میں آپ کے سامنے نمازی کے استھان سے سمبندھت مسئلوں کو لے کر اپستھت ہوئے ہیں. ہم اپنے اس پروگرام میں پریتن یہ کریں گے کہ نمازی کے استھان یا وہ جگہ جہاں پر ایک نماز پڑھنے والا کھڑا ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا مسئلے ہو سکتے ہیں اور ان کے احکام کیا ہیں, ان کو ہم آپ کے سامنے بیان کریں. اگر ہم سارانش کے طور پر کہیں تو ہم اپنے اس پروگرام میں پراتھمکتا کے طور پر دو باتوں کو بیان کریں گے. پہلی تو یہ کہ وہ استھان جہاں ایک نماز پڑھنے والا کھڑا ہوتا ہے اس استھان کی شرطیں کیا ہیں, کن شرطوں کے آدھار پر ایک استھان نماز پڑھنے کے لائق ہوتا ہے. دوسری بات جو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے وہ یہ ہے کہ نمازی کے استھان کے احکام کیا ہیں. اگر ان دونوں سے بات چیت کرنے کے بعد ہمارے پاس سمے بچتا ہے تو ہم اس بارے میں اپنی بات چیت شروع کریں گے کہ اگر کوئی انسان ہلتی ڈلتی اور متحرک جگہ پر نماز پڑھتا ہے تو اس کے بارے میں کیا احکام ہوں گے. تو یہ تین چیزیں ہیں جو انشاءاللہ آج ہمارے پروگرام میں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک نمازی کے استھان کی شرطیں کیا ہیں. اس کے بارے میں اسلام نے اور ہمارے فقہا نے ایک نمازی کے استھان کے لیے کچھ شرطیں بیان کی ہیں کہ اگر انسان نماز پڑھنے کھڑا ہو رہا ہے تو اس کو چاہیے جس استھان پر کھڑا ہوا اس کے اندر یہ شرطیں پائی جاتی ہوں. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نمازی کا استھان جہاں پر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھنا چاہتا ہے وہ مباح ہو. یہ اسلام کی ایک ایسی چیز ہے جس کو تقریباً ہر عبادت میں اس بات کا دھیان رکھا گیا, جیسے کہ ہم نے کہا تھا وضو کے بھاگ میں کہ جس پانی سے وضو کرنا چاہتا ہے وہ مباح ہو. اسی پرکار جس استھان پر انسان نماز پڑھنا چاہتا ہے جہاں پر وہ کھڑا ہو رہا ہے اس کے لیے آوشک یہ ہے کہ وہ استھان مباح ہو. اور دوسری چیز, دوسری شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں حرکت نہ ہو, ہل ڈل نہ رہی ہو, چل ڈل نہ رہی ہو, اس پرکار کی چیزیں نہ ہوں اس کے اندر, یہ دوسری شرط ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ جس استھان پر انسان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے وہ جگہ بہت چھوٹی اور بہت تنگ نہ ہو, اس کی چھت بہت چھوٹی نہ ہو تاکہ انسان رکوع, سجدہ اور قیام وغیرہ آسانی سے کر سکے. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جس استھان پر انسان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے وہ جگہ, وہ استھان پوتر ہو, پاک ہو. اسی کے بعد ایک اور شرط آتی وہ یہ ہے کہ اگر انسان کسی ایسے استھان پر کھڑا ہو رہا ہے کہ جو استھان اپوتر ہے, نجس ہے, تو اس کے لیے آوشک یہ ہے کہ وہ استھان اتنا زیادہ تر نہ ہو, اس کے اندر اتنی زیادہ نمی نہ ہو کہ وہ نمی انسان کے وستر, انسان کے لباس اور انسان کے شریر تک پہنچ سکتی ہو. اور اس کے بعد جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ جس استھان پر انسان سجدہ کرنا چاہتا ہے وہ سجدے کا استھان اس کے گھٹنے کے استھان سے اور پیروں کی انگلیوں کے استھان سے چار انگلیاں, چار انگلیوں ملی ہوئی اگر دیکھی جائیں, اونچی یا نیچی نہ ہو. یہ وہ شرطیں ہیں جو ایک نمازی کے استھان کے بارے میں, یعنی اگر نماز پڑھنا کھڑا ہو رہا ہے تو ان چیزوں کا دھیان رکھنا آوشک ہے. اس کے بعد جو بات آتی ہے وہ ہے نمازی کے احکام, نمازی کا استھان جو ہے اس کے بارے میں کیا احکام ہیں. تو سب سے پہلے جیسے ہم نے شرطوں میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان جس استھان پر نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے وہ استھان مباح ہو. تو اسی سے یہاں پر کچھ احکام نکلتے ہیں کہ اگر انسان کسی ایسے استھان پر کھڑا ہو جائے جو مباح نہ ہو, यानी अगर चूंकि शर्त यह है मुबाह हो, तो कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर अगर नमाज़ पढ़ी जाए तो इंसान की नमाज़ सही नहीं होगी और उस स्थान को मुबाह नहीं कहा जाएगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि इंसान किसी दूसरे की संपत्ति, किसी दूसरे के स्थान पर नमाज़ पढ़े और बिना उसकी इजाज़त के। हम जाते हैं किसी दूसरे के घर में गए या किसी दूसरे के प्लाट पर गए, बिना उसकी परमिशन, बिना उसकी अनुमति, बिना उसकी इजाज़त के नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हो गए। अगर इंसान ऐसी नमाज़ पढ़ता है बिना मालिक की अनुमति के नमाज़ पढ़ता है, तो उसकी नमाज़ सही नहीं होगी और ये स्थान मुबाह नहीं कहलाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि किसी ऐसी संपत्ति, किसी ऐसे स्थान पर नमाज़ पढ़े जिसका फ़ायदा, जिसका लाभ किसी दूसरे के लिए हो। यानी क्या? मसलन मिसाल दे दूँ, उदाहरण के सामने दे दूँ ताकि बात स्पष्ट हो जाए। जैसे किसी घर को अगर किसी ने किराए पर उठा दिया है, तो अब उस घर में चूंकि घर का लाभ यानी उस घर में रहना वो मखसूस है वो उस किराएदार के लिए। अगर किसी इंसान ने घर को किराए पर उठा दिया है, तो अब वो उस घर में उस समय तक नमाज नहीं पढ़ सकता है जब तक कि वो मुस्ताजिर या वो किराएदार उसको उसमें नमाज़ पढ़ने की अनुमति ना दे दे। अगर किराएदार की अनुमति के बिना नमाज़ पढ़ता है, तो उसकी नमाज़ सही नहीं होगी। तीसरी बात यानी तीसरा स्थान जहाँ पर नमाज़ सही नहीं होगी कि अगर कुछ लोग एक संपत्ति में पार्टनर हैं, एक प्लाट ख़रीदा, एक ज़मीन ख़रीदी, उसमें पार्टनर हैं कई लोग, अभी उनके हिस्से अलग अलग नहीं किए गए हैं, अभी उनको बांटा नहीं गया है, यानी सब उसमें शरीक हैं, सबका बराबर का भाग है उसके अंदर, अभी बांटा नहीं गया है। अगर बांटा ना गया हो तो बिना तमाम पार्टनरों के, बिना तमाम साथियों की अनुमति के उस स्थान पर नमाज़ पढ़ना सही नहीं होगा और यह स्थान मुबाह नहीं कहलाएगा। और ये बात, ये ध्यान रखने वाली बात है जो शायद हमारे इस्लामी समाज में भी बहुत ज़्यादा ये पेश आती है कि हमारे इस्लाम ने, हमारे फुकहा ने ये कहा है कि अगर कोई संपत्ति, कोई मिल्कियत, कोई प्लॉट, कोई घर किसी ऐसे समय पैसे से ख़रीदा गया हो, किसी ऐसे माल से ख़रीदा गया हो जिसमें खुम्स या ज़कात वाजिब था, तो उस माल से ख़रीदी हुई संपत्ति में नमाज़ पढ़ना सही नहीं होगा। यानी बिना खुम्स दिए, बिना ज़कात दिए उस पैसे से उसने घर ख़रीदा, अब उसमें नमाज़ पढ़ना चाहता है, तो ऐसी सूरत में हमारे फुकहा ये कहते हैं कि ये स्थान मुबाह नहीं है और यहाँ पर नमाज़ नहीं पढ़ सकता है। यहाँ पर आयतुल्ला सिस्तानी एक बात कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर कोई इंसान बिना खुम्स और बिना ज़कात दिए हुए पैसे से कोई चीज़ ख़रीदता है, तो उसमें उस वक्त तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, उस समय तक उसको उपयोग नहीं कर सकता है जब तक के हाकिम शरा उसको अनुमति ना दे दे। और अगर बिना हाकम शरा की अनुमति के उसको उपयोग करता है, तो एहतियात वाजिब के अनुसार, आयतुल्ला सिस्तानी ये कहते हैं कि एहतियात वाजिब के अनुसार उसकी नमाज बातिल होगी, नमाज उसकी सही नहीं है और ये स्थान मुबाह नहीं कहलाएगा। इसमें एक बात और जो कहा जाए जहाँ पर नमाज सही नहीं होगी, वो ये कि अगर कोई इंसान मर जाता है, जिस समय वो मरा तो उसके पास एक प्रॉपर्टी थी, एक संपत्ति थी, और उस संपत्ति, उस पैसे के ऊपर उसको खुम्स या ज़कात वाजिब था। यानी जब मरा तो खुम्स और ज़कात का कर्ज़दार होके मरा। अगर किसी ऐसे मुर्दे की संपत्ति किसी के हाथ में आती है, तो उसके लिए उस संपत्ति में उस समय तक नमाज़ पढ़ना सही नहीं होगा जब तक कि उसकी तरफ से खुम्स और ज़कात अदा न कर दिया जाए। और इसी में एक बात, चूँकि जैसे खुम्स और ज़कात की बात है, वैसे उसमें अगर कोई इंसान मर गया है और लोगों का कर्ज़दार है, जिस समय मरा उसने कर्ज़ लेकर मर गया था, तो जब तक उसका कर्ज़ अदा न कर दिया जाए तब तक कि उस संपत्ति में नमाज़ पढ़ना सही नहीं और ये मुबाह नहीं कहलाएगी। और इसी प्रकार उस स्थान पर भी नमाज़ पढ़ना सही नहीं जिसका मालिक, एक प्रॉपर्टी थी, उसके मालिक कुछ बच्चे थे यानी अभी बालिग नहीं हुए, या मेंटली तौर से एबनॉर्मल थे, पागल थे, इस प्रकार के लोग थे, तो ऐसी उनकी संपत्ति में भी नमाज़ पढ़ना सही नहीं। मगर ये कि जो उनका वारिस है, जो उनका प्रतिनिधि है, जो इनका वकील है, उससे इस बात की परमिशन ली जाए, परमिशन लेने के बाद उस स्थान पर नमाज़ पढ़ी जा सकती है। इसी प्रकार ऐसी संपत्ति पर भी नमाज़ पढ़ना सही नहीं जिसमें कई वारिस हों। अगर कोई इंसान मर गया है और उससे कई वारिस थे, तो अगर कुछ वारिस गायब हों, उनका पता ना हो कहाँ पर हैं, तो उनकी संपत्ति पर भी बिना परमिशन के, बिना अनुमति के नमाज़ पढ़ना सही नहीं है। और अगर नमाज़ पढ़ रहा है तो यह स्थान मुबाह नहीं कहलाएगा और उसकी नमाज़ सही नहीं होगी। यहाँ पर एक बात जो कह देना आवश्यक है वो ये है कि ये कभी कभी हमारे समाज में पेश भी आती, पहले ज़्यादा पेश आती थी, अब बहरहाल लोगों के अंदर जागरूकता आई है, कम होती है, लेकिन फिर भी बाज़ स्थानों पर यह चीज़ है कि अगर हम देखते हैं अपनी मस्जिदों में कोई बच्चा किसी स्थान पर बैठा हुआ है, कोई बुज़ुर्ग आया, उसने उसको वहाँ से हटा दिया और वहाँ पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ा, तो ऐसे स्थान के बारे में क्या कहा जाएगा? यहाँ पर हमारे फुकहा ये कहते हैं, अगर किसी इंसान ने कोई स्थान मस्जिद में ले रखा था और कोई दूसरा आकर उसको हटा के वहाँ पर नमाज़ पढ़ता है, तो उसकी नमाज़ में इश्काल है और उसके लिए आवश्यक ये है कि वो उस जगह से जाकर किसी दूसरे स्थान पर नमाज़ को दोबारा पढ़े। यानी अगर किसी को हटा कर उसके स्थान पर नमाज़ पढ़ता है तो उसकी नमाज़ सही नहीं होगी, उसके लिए आवश्यक ये होगा दूसरे स्थान पर दोबारा नमाज़ पढ़े वही नमाज़ जो उसने उस स्थान पर पढ़ी थी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहीं शहर के बाहर या गांव के बाहर या कहीं जाते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें होती हैं, किसी की प्रॉपर्टी है, तो अगर ऐसे स्थान पर हम जाते हैं तो ऐसे स्थान पर नमाज़ पढ़ने की क्या है? तो हमारे फुकहा ये कहते हैं, अगर ज़मीन बहुत बड़ी और बहुत वसी हो तो ऐसे स्थान पर नमाज़ पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर हमको इस बात का यकीन हो, इस बात का विश्वास हो कि जिस स्थान पर नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं उसका मालिक उस स्थान पर नमाज़ पढ़ने के लिए राज़ी नहीं है, तो अगर उसके नाराज़ी होने का हमको विश्वास है तो ऐसी सूरत में उस जगह पर नमाज़ पढ़ना सही नहीं है। लेकिन अगर हमको इसका विश्वास नहीं है तो भले ही वह दूसरे की संपत्ति है लेकिन वहाँ पर नमाज़ पढ़ी जा सकती है। इसी में एक बात और जो कहा जाता है, जो हमारे गांव के लोगों के लिए और वो लोग जो खेती बाड़ी करते हैं उनके लिए समझना आवश्यक है, वो ये है कि वो लोग, वो मुसलमान जो गांव के बाहर या शहर के बाहर जिनके खेत हैं और वो कुछ मुसलमान उधर से गुजरते हैं, ऐसे खेत हैं जिन पे दीवार नहीं बनी हुई है, बाउंड्री वॉल नहीं खींची हुई है, तो ऐसे मुसलमान जो उस खेत उस बाग के किनारे से गुजरते हैं तो उनके लिए वहाँ पर नमाज़ पढ़ना उस ज़मीन पर, वहाँ पर बैठना, वहाँ पर सोना कोई इश्काल नहीं है, और हत्ता ये कि उसका थोड़ा मोड़ा उपयोग भी करना इश्काल नहीं रखता है, मगर ये कि ये इस बात का विश्वास हो कि जो मालिक है, जो बागबान है, वो इस बात के लिए राज़ी नहीं। अगर राज़ी होने का विश्वास ना राज़ी ना होने का विश्वास नहीं होता है तो उसमें थोड़ा बहुत हस्तक्षेप भी कर सकता है, मसलन शाख से बाहर लटकती हुए फल को भी तोड़ के वो खा सकता है, लेकिन छोटा मोटा प्रयोग, ना ये कि आप पिटारे में भर के लेके जाने लगें। और इसी प्रकार वो स्थान जिसके बारे में हमको पता नहीं है कि ये जगह गस्बी है या नहीं है, उस स्थान पर भी नमाज़ पढ़ना मुश्किल नहीं है और नमाज़ उसकी सही होगी। जैसे कि हम कहीं जाते हैं, कोई मस्जिद हमको दिखाई दी, हमें क्या पता ये मस्जिद किसी की ज़मीन को गस्ब करके, उसकी ज़मीन को हड़प करके बनाई गई है या उसकी मिल्कियत है, वो राज़ी था उससे बनाई गई है। अगर हमको इस बात का विश्वास नहीं होता है तो ऐसे स्थान पर नमाज़ पढ़ने में कोई मुश्किल नहीं है और नमाज़ उसकी सही होगी। अगर इसमें एक बात और, अगर हम जिस समय नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हुए हैं, हम जिस समय नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हुए, हमको पता नहीं था कि यह स्थान गस्बी था, हड़पा हुआ था, चोरी किया हुआ था, छीना झपटा था, ये हमको नहीं पता था। नमाज़ पढ़ने के बाद हमको पता चला कि ये जो स्थान था जहाँ हमने खड़े होकर नमाज़ पढ़ी, ये स्थान गस्बी था, तो अब उसके बारे में क्या हुक्म है? तो हमारे फुकहा ये कहते हैं कि अगर नमाज़ पढ़ने के बाद मालूम होता है कि यह स्थान गस्बी था तो उसकी नमाज़ सही है और उसमें कोई इश्काल नहीं है। तो ये वो मसले थे जो एक नमाजी के स्थान से संबंधित थे, उसके बारे में जो अहकाम थे हमने आपके सामने बयान किए कि अगर, चूँकि पहली शर्त ये है कि नमाजी का स्थान मुबाह हो, तो अगर मुबाह नहीं है तो कौन कौन सी ऐसी मिसालें हैं जहाँ पर हम कहेंगे कि यह स्थान मुबाह नहीं है, ये वो चीज़ें जो हमने आपके सामने बयान किया। इस प्रकार की और भी चीज़ें हो सकती हैं जो हमारे समाज में, हमारी ज़िंदगी में पेश आती हों, इसी आधार पर हम उसके बारे में भी फैसला कर सकते हैं या अपने उस मुज्तहिद से हम मसला पूछ सकते हैं जिसकी हम तकलीद कर रहे हैं। तो ये वो चीज़ें थी जो हमने आपके सामने बयान की। उसके बाद की चीज़ जो है वो है कि अगर दूसरी शर्त, जैसा कि हमने आपके सामने बयान किया था कि शर्त ये है कि जिस स्थान पर नमाजी नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा हो रहा है वो स्थान हिल डुल ना रहा हो, मुतहरिक ना हो, तो ये वो चीज़ है जिसके बारे में हम आपको इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में बयान करेंगे। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि अगर हमारे पास समय बचता है तो हम बयान करेंगे, चूँकि आज हमारा समय यहीं पर समाप्त हो रहा है, लिहाजा हम अपने किसी अगले प्रोग्राम में इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो आज के हमने इस प्रोग्राम में दो बातों को आपके सामने पेश किया। पहली ये कि नमाजी का स्थान जो है उसके लिए शर्तें क्या हैं, जिसकी शर्तें हमने आपके सामने बयान की, और नमाजी के स्थान के बारे में अहकाम क्या हैं जो हमने आपके सामने बयान किए हैं। हम आगे भी आपके सामने इसी प्रकार मसलों को और अहकाम को लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।